एक जुलाई दिन बुधवार, दिन भर के साथ मैं रेहान फजल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया, कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी, एफएसपा को समाप्त किए जाने की जरूरत।
एफएसपीए को रिपील तो करना ही चाहिए, लेकिन वो रिपील जब तक नहीं होता तब तक ये खास तौर पे जो सेक्शन 7 है, क्योंकि जो भी फैमिलीज के केसेस उसमें दी गई है उसमें।
दार्जिलिंग में भूस्खलन में 38 लोगों की मौत और अरस्तु और सिकंदर महान के देश ग्रीस की क्यों हो गई है ऐसी हालत, जानेंगे आज के दुनिया जहान में।
जितने भी राहत पैकेजेस दिए गए वो मूल समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऊपर से थोड़ा और टाइम दे दिया तो थोड़े दो और दिन तक जैसे कैंसर के रोगी को आप सेरिडॉन देते जाएं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों और अपने संविधान की उपेक्षा की है। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जम्मू कश्मीर पर अपनी रिपोर्ट पेश की। एमनेस्टी की रिपोर्ट सुरक्षा बलों के 1990 से 2012 में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लगभग 100 केसों के अध्ययन पर आधारित है। संस्था ने 2013 में पीड़ितों के परिवारों के 58 सदस्यों से बातचीत भी की। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 सालों में राज्य में तैनात सुरक्षा बल के किसी भी जवान के खिलाफ नागरिक न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया गया है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकुओं ने मिस्र के सायनाई प्रायद्वीपों में सुरक्षा बलों पर लगातार हमले किए हैं। सेना का कहना है कि मुठभेड़ अभी जारी है। सेना के मुताबिक इसमें कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। सेना की 5 चौकियों और 1 पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। सायनाई पर अब तक हुआ यह सबसे बड़ा सुनियोजित हमला है। कल ही राष्ट्रपति सीसी ने वादा किया था कि वो इस्लामिक चरमपंथियों के खिलाफ अदालती प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए कानून बनाएंगे। हांगकांग में हजारों प्रदर्शनकारी चुनाव कराने और बीजिंग समर्थन प्राप्त चीफ एग्जीक्यूटिव सीवाई ल्योंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने चीन ने निर्वाचन संबंधी कई सुधारों को लाने की कोशिश की ताकि चीफ एग्जीक्यूटिव के पद के उम्मीदवार की जांच करने का अधिकार चीन के पास रहे, लेकिन हांगकांग की विधानसभा में वे सुधार पास नहीं हो पाए। आज के विरोध प्रदर्शन की एक आयोजक संस्था सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट की डेजी चैन ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ल्योंग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मेरी समझ में सीवाई ल्योंग ने कहा था कि मौजूदा सरकार राजनीतिक सुधारों को दोबारा शुरू नहीं करेगी। मुझे लगता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर सीवाई ल्योंग का फर्ज बनता था कि वो राजनीतिक सुधारों के विरोध में वोट देते, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि वे तुरंत इस्तीफा दे दें। ये थे डेजी चैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्सा का कहना है कि अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों में भाग लेकर वो राजनीति में फिर दाखिल हो रहे हैं। अपने जिले में समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने समर्थकों की जोरदार मांग को ठुकरा नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने इस संभावना से इनकार किया कि वे उन्हें अपनी पार्टी से चुनाव में खड़ा होने देंगे। राजपक्सा और सिरिसेना दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं। आधे से ज्यादा संसद सदस्य अब भी राजपक्सा के समर्थन में लगते हैं क्योंकि वे सिंगली बहुल इलाकों में बहुत लोकप्रिय हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कैमरून उन 84 बच्चों को आजाद करने की प्रक्रिया में है जिन्हें 6 महीने पहले हिरासत में लिया गया था। कैमरून के उत्तर में स्कूलों में छापों के दौरान इन बच्चों को पकड़ा गया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने आज जारी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम यानी एफएसपा की शुरुआत के 25 वर्ष बाद भी इस कानून के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघनों के लिए दंड से छुटकारे की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे साथी शकील अख्तर थोड़ी देर पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के संवाददाता सम्मेलन से होकर लौटे हैं। बताइए क्या क्या बातें कही गई वहां पर।
देखिए रेहान, एक तो ये एक ऐसे समय में एमनेस्टी ने रिपोर्ट जारी की है जब 25 वर्ष इस कानून को भारत के एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में 25 साल हो गए हैं इसका स्पेशल कानून को लागू किए हुए, तो ये इस मौके पर इन्होंने रिपोर्ट जो जारी की है उसमें ये बताया है कि इस कानून की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसकी वजह से जो वहां पर जिस तरह के उल्लंघन मानवाधिकारों के खासतौर से सुरक्षा दलों के जरिए जो हुए हैं या वहां के जो स्टेट पुलिस के जरिए हुए हैं उनमें कार्रवाई नहीं हो पाती। तो ये उनका कहना ये था कि जो इंसाफ का अमल पूरे भारत के शहरियों को हासिल है वो कश्मीर के लोगों को भी हासिल होना चाहिए और उसका सबसे इफ़ेक्टिव ज़रिया यही है कि इस कानून को अब हटा लिया जाए क्योंकि स्थिति भी अब वहाँ पर काफ़ी सुधरी हुई है। और उसमें इस जो एमनेस्टी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने खिताब किया उसमें सीनियर डायरेक्टर मीनार पिंपले थे और उन्होंने उसका एक उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी कुछ धाराएं क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है उसको हटाना।
FSPA को रिपील तो करना ही चाहिए लेकिन वो रिपील जब तक नहीं होता तब तक ये खास तौर पे जो सेक्शन 7 है क्योंकि जो भी फैमिलीज के केसेस उसमें दी गई है उसमें यही कहा गया है कि ये सेक्शन 7 के कारण उनको जो एक न्याय मिलना चाहिए जो एक आम इंसान है भारत में कहीं भी रहता है उसको एक न्याय की व्यवस्था का एक्सेस है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को महसूस नहीं हो रहा है और वो न्याय जब तक नहीं मिलता तब तक उनके लिए क्लोजर एक इंसान उनके घर का उनका एक रिलेटिव उनका बेटा या जो भी है जो मर गया उसका क्लोजर भी होना चाहिए वो एक उनका हक बनता है वो होना चाहिए ये हम उसे पुश कर रहे हैं। इसके लिए ये जो डिमांड है क्लियर कट कम से कम रिपील सेक्शन 7।
तो सेक्शन 7 के समाप्त करने की बात की जा रही थी। शकील ये बताएं कुछ कोर्ट मार्शल की जो प्रक्रिया है सेना में उस पर भी कुछ टिप्पणी हुई?
जी हाँ इसमें ये काफ़ी खुलकर इस पर बात हुई और उन लोगों का ये कहना था एमनेस्टी का खास तौर से कि जब भी इस तरह के सवालात मानव अधिकारों के उल्लंघन के आते हैं और जब कंप्लेन आर्मी के साथ या पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जब किया जाता है तो स्पेशली जो सुरक्षा दल हैं तो उनका कहना है कि उनका रिस्पांस ये रहता है कि 96% केसेस में जो इल्ज़ाम हैं वो गलत हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो जिस तरीके से वो अपनी तफ्तीश वगैरह करते हैं उसमें एक शैलेश राय थे जो पॉलिसी एडवाइज़र एमनेस्टी के, उनका कहना था कि उनका जो तरीका है और जिस तरीके से वो डिसमिस कर देते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है।
कोर्ट मार्शल होती है जो इंटरनल मैकेनिज्म होती है आर्मी की देखने की, उसमें भी बहुत ड्रॉबैक्स हैं जैसे कि वो जो सोल्जर्स कोर्ट मार्शल पे बैठते हैं उनके कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं होती लेकिन फिर भी वो जजेस के काम करते हैं, मतलब वो एविडेंस को देखते हैं, फाइंडिंग सुनाते हैं, सेंटेंस सुनाते हैं। दूसरी बात यह है कि वो स्वतंत्र नहीं होते, मतलब वो इंडिपेंडेंस की एक प्रॉब्लम है क्योंकि जो सोल्जर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनके सुपीरियर्स ही वो कोर्ट मार्शल कन्वीन करते हैं तो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
और जैसा कि आपने सुना इन लोगों का ये डिमांड है कि न सिर्फ ये कि इन जो तमाम जो मामलात हुए हैं 25 बरस के अंदर और जिनमें सबूत मौजूद हैं ऐसे मामलों की जो है वो इंडिपेंडेंट कोई इंस्टीट्यूशन से उनसे जांच कराई जाए और उन मुकदमों को जो है वो सिविलियन कोर्ट में चला जाए, ये इनकी डिमांड है। तो ये सारा फोकस इनका ये था कि एक तो एस्पा जो है हटाया जाए और साथ ही साथ जो मजबूत केसेस हैं जो गहरे केसेस हैं उनका मुकदमा जो है सिविलियन कोर्ट में चलाया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका शकील अख्तर। दार्जिलिंग जिले के 3 उपमंडलों में मंगलवार रात से भारी बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर हुए भूस्खलन में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है जबकि अनेक लोग लापता हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर शोक जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। कोलकाता से अमिताभ भट्टासाली ने ये रिपोर्ट भेजी है।
दार्जिलिंग पहाड़ में मंगलवार रात से ही लगातार बारिश चल रहा था, इसी की वजह से रात को ही भूस्खलन शुरू हो गया था पहाड़ की कई इलाके में। सबसे बड़ा भूस्खलन लोकप्रिय पर्यटक केंद्र मिरिक में हुआ है, वहां के लिंबू गांव में ही 20 लोगों का मृत्यु हुआ है। दूसरा लोकप्रिय पर्यटक केंद्र कालिम्पोंग में 6 लोगों का मौत हुआ है। काफी परेशानी के बाद लिंबू गांव गए थे दार्जिलिंग का पत्रकार सूरज शर्मा, उनसे हमने पूछा था वहाँ के हालात के बारे में।
অনেকটাই ঘর মাটির নিচে চাপা পড়েছে, বেশ কিছু ঘর বাড়ি পাথরের জন্য ভেঙেছে, এখন সবথেকে বড় কথা হলো মানুষের 7 জনের বডি এখনো পাওয়া যায়।
সুরজ শর্মা বল রহে থে জ্যাদাতর ঘর তো ভূস্খলন মে টুট কে নিচে চলে গয়ে, কই ঘর পাহাড় সে গিরে পাথরোঁ কে ওয়াজা সে টুটা হ্যায়, পর গাঁও কে লোগোঁ কা জ্যাদা চিন্তা ইসলিয়ে হ্যায় কি 7 লোগোঁ কা অভি ভি পতা নাহি চল পায়া, উনকে শবোঁ কা তালাশি জারি হ্যায়, শায়দ উনকে শব মিট্টি মে দব গিয়া হো, পর কহাঁ হো সকতা হ্যায় উনকে শব ইয়ে পতা করনা বহুত হি কঠিন কাম হ্যায় কিউঁকি ভূস্খলন কাফি লম্বা है, वहां बहुत नीचे तक चला गया मिट्टी और पत्थर। पत्रकार सूरज शर्मा का शब्द। लिंबू गांव के अलावा मिरिक के दूसरे इलाके में 10 लोग मरे हैं, वहां के सारे शव मिरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। सूरज शर्मा वहीं से बीबीसी से बातचीत कर रहे थे।
सिचुएशन खूब कष्टकर, कारण साधारण मानुष जरा रहे थे तारा बॉडी नीचे आसेन
सूरज शर्मा का कहना था, अस्पताल का स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। शव परीक्षण के बाद डेड बॉडी परिवार को दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ा तो उन दो परिवारों को देखकर हुआ जिनके सारे सदस्य कुल 6 लोग मारे जा चुके हैं। उनका शव लेने के लिए भी कोई नहीं बचा। इलाके में राहत शिविर खोला गया। 2000 के करीब लोग वहां आश्रय लिए हैं। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी GTA और राज्य प्रशासन के तरफ से राहत सामग्री दिया जा रहा है। सूरज शर्मा का शब्द। भूस्खलन के वजह से समतल क्षेत्र से दार्जिलिंग या सिक्किम जाने का लगभग सारे रास्ता टूट गया है। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जवान वहां लगातार काम कर रहे हैं। राहत कार्य में सेना, SSB, NDRF और SDRF सिविल डिफेंस फोर्स के टुकड़ियां भाग ले रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल सुबह तक दार्जिलिंग पहुंचने वाले हैं।
दार्जिलिंग में भूस्खलन से 38 लोगों की मौत। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सबसे अहम उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम लोगों का जीवन सरल बनाना है। इसे डिजिटल क्रांति कहा जा रहा है। इस अवसर पर देश की बड़ी कंपनियों ने बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। सुबैर अहमद की रिपोर्ट।
आज दिल्ली में हुए डिजिटल इंडिया उद्घाटन समारोह में 10,000 लोग मौजूद थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया पर एक पुस्तिका जारी की। सरकार ने इस अभियान के तहत 9 क्षेत्रों को निर्धारित किया है जो इस किताब में दर्ज है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया से सभी नागरिक जुड़ पाएंगे।
ये सुविधा जब तक हम गांव, गरीब, किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये विकास की जो बातें हैं, न वो उसका लाभ उठा पाएगा, न हम उसको सेवा दे पाएंगे। और इसलिए इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है कि आने वाले वर्षों में दूर सुदूर गांव में भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता रहे।
भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को एक हाई स्पीड डिजिटल हाईवे द्वारा इंटरनेट की दुनिया से जोड़ने का कार्यक्रम तीव्र गति से प्रारंभ हो चुका है।
सरकार की मंशा है कि डिजिटल इंडिया के मार्फत लोगों को रोजमर्रा की सहूलियतें दिलाई जाएं, नागरिकों को सरकारी महकमों से जोड़ा जाए। इस मुहिम के तहत सरकार की कोशिश होगी कि देश के सभी गांव हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ सकें। लेकिन डिजिटल इंडिया है क्या? केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद।
डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया का सार है एक डिजिटली साक्षर भारत, एक समर्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक सुशासित भारत, जिसकी बुनियाद पर बनेगा एक शक्तिशाली, विकसित और दुनिया में प्रतिष्ठित भारत। यह है कल्पना डिजिटल इंडिया की।
इस अवसर पर दर्जनों उद्योगपतियों ने डिजिटल इंडिया में अपनी भूमिका के बारे में ऐलान किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने कहा,
जियो इज सेटिंग अप अ नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट विल एनेबल।
मुकेश अंबानी कह रहे थे कि उनकी कंपनी देश भर में 1.5 लाख ऐसी रिटेल दुकानें खोलेगी जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और मोबाइल वगैरह बेचे जाएंगे। डिजिटल इंडिया की राह में कई रुकावटें भी हैं। इसे कामयाब बनाने के लिए सभी नागरिकों के पास मोबाइल फोन होना चाहिए और तेज रफ्तार इंटरनेट की भी जरूरत है, जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिटर सुनील जैन ने कहा।
अब जब स्पेक्ट्रम की कमी है या स्पेक्ट्रम की कॉस्ट इतनी है या टेलीकॉम कंपनी इतना लॉस मेक कर रहे हैं, तो ये तो दिक्कत ही है। ये जो भारत ब्रॉडबैंड का नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है, इसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये ऑलरेडी 1-1.5 साल डिले है।
डिजिटल इंडिया का बजट 1 लाख करोड़ का है और सरकार के अनुसार इससे 5 करोड़ नौकरियों के पैदा होने की आशा है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रही आईएएस ऑफिसर स्मिता सबरवाल ने आउटलुक पत्रिका को उनके बारे में सेक्सिस्ट लेख लिखने का आरोप लगाया है। पत्रिका को मानहानि का लीगल नोटिस भेजकर उन्होंने माफीनामा भी मांगा है। पत्रिका का कहना है कि ये नोटिस उन्हें अभी तक नहीं मिला है। क्या है ये पूरा मामला, बता रही हैं दिव्या आर्य।
अंग्रेजी पत्रिका आउटलुक ने बिना नाम लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव स्मिता सबरवाल की ओर इशारा करते हुए लिखा,
वो काम क्या करती है ये तो एक पहेली है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक वो अपनी खूबसूरत साड़ियों से फैशन स्टेटमेंट देती है और मीटिंग में आई कैंडी का काम करती है।
पत्रिका ने अपने लेख के साथ एक कार्टून भी छापा था जिसे वेबसाइट ने अब हटा लिया है। इस कार्टून में एक महिला को फैशन शो में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया था और कुछ नेताओं को बुरी नजर से महिला की तरफ घूरते हुए दिखाया गया था। लेख में कार्टून के बारे में लिखा था,
हमेशा साड़ी पहनने वाली महिला एक फैशन शो में पैंट और फ्रिल वाली टॉप में नजर आई तो फोटो खींचने का अच्छा मौका बना।
स्मिता सबरवाल देश के किसी मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त की जाने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं। उनके ख्याल से ये लेख उन्हीं के लिए लिखा गया है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा,
मेरी तरह बहुत लाखों महिलाएं हैं जो काम कर रहे हैं अपने घरों से निकल के, और उनका इस तरह से मोरल डाउन करने की कोशिश करना या ये सुझाव देना कि वो अच्छे देखने में अच्छे हैं इस करके उनका करियर में अच्छा हो रहा है, इट इज अ वेरी सेक्सिस्ट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, बहुत ही बुरा एटीट्यूड है। और आउटलुक जैसे मैगजीन में जो एक ओपिनियन मेकर मैगजीन है, ऐसे न्यूज़पेपर में और ऐसे पब्लिकेशंस में उनका डालना, ये मुझे बहुत हर्ट किया है।
करियर में आगे बढ़ने के पीछे एक महिला का काम नहीं उसकी सुंदरता होती है, ऐसे आरोप लंबे समय से लगाए गए हैं। साड़ी की जगह पैंट टॉप पहनने पर महिला को अलग नजर से भी देखा जाता रहा है, पर इस सोच को पुराना और रूढ़िवादी बताने में महिलाओं का साथ अक्सर पत्रकारों ने ही दिया है। पुरुषों के प्रभुत्व वाले काम और उद्योगों में महिलाओं के आने पर लेख लिखे गए हैं, तो क्या ये महिलावादी समझ महज सतही है? मीडिया पर नजर रखने वाली वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री चलाने वाली वरिष्ठ पत्रकार मधु त्रेहन के मुताबिक पत्रकारिता में सेक्सिस्ट लेखों और तस्वीरों की मिसालें अब भी आम हैं।
सभी लिख रहे हैं, कोई जूनियर सीनियर, कोई अगर आप देखो जो पेजेस एडिटोरियल पेजेस होते हैं कि जैसे तस्वीरें स्पोर्ट्स वुमेन की निकालते हैं, दे आर जस्ट चीप। यही तो प्रॉब्लम है कि ऐसी चीजें कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं समझते कि ऐसे कैजुअली लाइट लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ऐसी ही एक मिसाल पिछले साल सामने आई जब अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पाडुकोण की क्लीवेज वाली एक तस्वीर छापी थी। इस पर दीपिका ने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि महिला सशक्तिकरण के दौर में पाठकों की नजर एक कामकाजी औरत की तरफ ऐसे खींचना गलत है। फिर अखबार ने दीपिका के इस गुस्से पर जवाब देते हुए कहा था, दीपिका हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप बेहद खूबसूरत हैं और हम चाहते हैं कि हर किसी को इस बात का पता चले। एक बहुत साफ रेखा है जो तारीफ की सीमाओं को बदतमीजी की हद में बदल देती है। फर्क नजरिए का है, रेखा के इस ओर या उस ओर। मधु त्रेहन के मुताबिक समाज की सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि पत्रकार भी अपने आसपास के माहौल से सोच बनाते हैं। जब आए दिन नेताओं की ओर से सेक्सिस्ट बयान आते हैं और इनमें कई खुद महिला होती हैं, तो इसका असर तो होगा ही। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
ऋण संकट से जूझ रहे ग्रीस ने कहा है कि पिछले हफ्ते उसके ऋणदाताओं ने समझौते का जो मसौदा रखा था उसे वो शर्तों के साथ स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन जर्मनी ने उनकी किसी भी तरह की पेशकश को खारिज कर दिया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने साफ तौर पर कहा है कि रविवार को होने वाले जनमत संग्रह से पहले ग्रीस से कोई बातचीत संभव नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट सुना रहे हैं समीर आत्मत मिश्र।
पिछले 5 साल से ग्रीस में चल रहे ऋण संकट के दौर में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसे अब किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता नहीं मिल सकेगी। इस आर्थिक सहायता के अंत की नौबत तब आई जब ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कर्ज को तय सीमा के भीतर चुकाने में नाकाम रहा और यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने उसके नए सहायता पैकेज की मांग को नकार दिया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने ऋणदाताओं के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। इसमें वो वार्ता विफल होने से पहले की लगभग सभी शर्तों को मानने और जनमत संग्रह कराने को तैयार हैं। लेकिन जर्मनी के वित्त मंत्री वोल्फगांग श्वाइबले ने बर्लिन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिप्रास की ओर से फिलहाल औपचारिक रूप से किसी समझौते की बात सामने नहीं आई है। एक और तो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ग्रीस डील को खारिज करने को लेकर जनमत संग्रह कराना चाहता है, वहीं अब वो कुछ स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्वीकार करने या निरस्त करने जैसी कोई चीज है ही नहीं। जर्मनी के वित्त मंत्री वोल्फगांग श्वाइबले के शब्द। उधर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने संसद में कहा है कि जब तक रविवार को होने वाला जनमत संग्रह संपन्न नहीं हो जाता, तब तक ग्रीस से कोई बातचीत नहीं होगी। इस बीच ग्रीस में आज कुछ बैंक खुले जरूर रहे, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो पेंशनर हैं और जिनके पास डेबिट कार्ड्स नहीं हैं। ग्रीस के आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और लोग अपना धैर्य खो रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास को परिस्थितियों को देखकर समझौता करना चाहिए। समझौता करने में कोई बुराई नहीं है। ग्रीस के लोग परिस्थितियों को समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। वहीं कुछ लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। इस बीच इटली के वित्त मंत्री पीएल कार्लो पेडवान ने बीबीसी को बताया है कि यूरो जोन के वित्त मंत्री अभी ग्रीस के ऋण संकट पर समझौते का विकल्प खुला रखे हैं। ग्रीस की सरकार और ग्रीस के लोगों के सामने समझौते के विकल्प खुले हैं। जनमत संग्रह के बाद सरकार का रुख निश्चित रूप से अलग हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और जैसा मेरे साथी भी मानते हैं, समझौते के रास्ते हमेशा खुले हैं। इटली के वित्त मंत्री पीएल कार्लो पेडवान के शब्द। मंगलवार को यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने ग्रीस की मदद करने वाले पुराने प्रस्ताव को जारी रखने से इनकार कर दिया था। ग्रीस इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज को न चुका पाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया।
ग्रीस का आर्थिक संकट। ग्रीस का संकट सिर्फ ग्रीस का संकट नहीं है, इस स्थिति से निपटना यूरोजोन के लिए भी बड़ी चुनौती है। इतिहासकार कहते हैं कि पश्चिमी जगत का जो आज है, उस पर ग्रीस के अतीत का सबसे गहरा असर है। ग्रीस ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये देश बदहाली की ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां से निकलने का रास्ता बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी समय रहते नहीं ढूंढ पाए। क्या सचमुच ग्रीस के लिए बेहतरी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं? दुनिया जहान में निखिल रंजन आज इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहान।
आज पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के जितने भी आयाम हैं, वो सभी यूनान की संस्कृति से प्रभावित रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली अतीत इसका रहा है।
इतिहासकार अनिल केसिंग जिस यूनान की बात कर रहे थे, वहाँ आज ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। आर्किमिडीज और अरस्तु के देश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज नहीं चुकाया। यूरोप, यूरोजोन और दुनिया आशंकित है, लेकिन यूनान दुख और गुस्से से भरा है। बंद पड़े बैंक, माथे पर अरबों डॉलर का कर्ज, बेरोजगारों की फौज और सरकारी खजाना खाली, ग्रीस की ये हालत क्यों हो गई? अर्थशास्त्री डॉक्टर भरत झुनझुनवाला।
भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी, सरकारी कर्मियों की अकर्मण्यता, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इस प्रकार के जो कल्याणकारी खर्च हैं, वो बहुत भारी है और उतनी इनकम ग्रीस में है नहीं।
ये वही देश है जिसने कभी सुकरात को जन्म दिया। ज्ञान और वैज्ञानिक सोच के बलबूते इंसान के मन से अंधविश्वास की गांठें खोली, अपने वैभव से दुनिया की आंखों में चमक पैदा की।
400 बीसी के आसपास ही अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिसको हम पेरिक्लीज का युग कहते हैं। पेरिक्लीज एक यूनान के शासक, उनके समय में ये अपने वैभव के पूर्ण पे था, जब एक्रोपोलिस का निर्माण हुआ, और वही समय है जब सुकरात और प्लेटो और अरस्तु यूनान को अपने दर्शन शास्त्र का ज्ञान दे रहे थे, और विश्व में लॉजिक तर्क शास्त्र का उदय इस समय हो रहा था, और स्थापित मान्यताओं को चैलेंज करके नई मान्यताएं स्थापित हो रही थी।
गौरवशाली अतीत तो बहुत पहले पीछे छूट चुका, लेकिन वर्तमान संकट की शुरुआत भी कोई 3 दशक पहले हो गई थी। अर्थशास्त्री डॉक्टर आर के जैन बताते हैं,
1981 में ग्रीस यूरोपीय संघ का सदस्य बना तो एक ये राजनीतिक निर्णय था, और ग्रीस की व्यवस्था 1981 के बाद से जो है वो एक कम्पिटिटिव इकोनॉमी नहीं बन। जब 2001 में ग्रीस ने यूरो जोन को ज्वाइन करा तो उसमें कुछ विकास आया, लेकिन 2004 के जब ओलंपिक गेम्स हुए उसके बाद काफी बड़ी मात्रा में ग्रीस ने ऋण लिया, और विशेष रूप से 2008 का जो आर्थिक संकट था, जो जिसका शुरुआत अमेरिका में हुई और जब वो फैल के विश्व भर में विशेष रूप से यूरोप में 2010 में जब यूरोजोन का संकट हुआ, तो उसके फलस्वरूप ग्रीस जो है एक यूरोप का काफी अत्यधिक गरीब और ऋणी देश उभर के आया।
ग्रीस के लिए यूरोजोन में आना फायदेमंद साबित नहीं हुआ, इसने देश की खुद पर निर्भरता कम कर दी और सरकार को निश्चिंत रहने के लिए वक्त दे दिया। इसके बाद सुधारों के बदले मिले आर्थिक मदद ने भी बीमारी और बढ़ा दी। भरत झुनझुनवाला बताते हैं,
मूल बात यह है कि ग्रीस का जो सरकार है वो अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रही है, और इसका एडजस्टमेंट जो इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति के माध्यम से हो सकता था वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ करने के लिए उनके पास कंसेंसस नहीं है, इसलिए वो जितने भी राहत पैकेजेस दिए गए वो मूल समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऊपर से थोड़ा और टाइम दे दिया तो थोड़े दो और दिन तक, जैसे कैंसर के रोगी को आप सेरिडॉन देते जाएं और उसको उसका दर्द को रोकते जाएं और उसका रोग बढ़ता जाए, उसी प्रकार की परिस्थिति ग्रीस की है।
ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज नहीं चुका सका, अब उसे अपने भविष्य का फैसला करना है। कर्ज की अदायगी नहीं कर पाने का ये मतलब नहीं कि उसे यूरोजोन से बाहर जाना ही होगा।
ग्रीस इंग्लैंड की तरह से अपनी मुद्रा को यूरोपियन यूनियन से अलग कर ले, लेकिन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना रहे, तो ये प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन के लिए भी हल हो जाएगी और ग्रीस के लिए भी हल हो जाएगी, क्योंकि तब जो है ग्रीस को यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स का जो एक्सेस है, अपने माल को भेजने का, वहाँ से लोगों के आने का, अपने लोगों के जाने का, वह सब तो यथावत रहेगा, लेकिन जो मुद्रा के अवमूल्यन करके वो अपना जो खाता है उसको बैलेंस कर सकेंगे।
फैसला यूरोजोन को भी करना है, क्योंकि ग्रीस का संकट सिर्फ ग्रीस के लोगों का नहीं है। डॉक्टर आर के जैन ग्रीस के यूरोजोन से बाहर जाने के असर के बारे में बताते हैं।
अभी और मीडियम टर्म में काफी नकारात्मक परिणाम होंगे। मीडियम टर्म के बाद जो है, जब करेंसी डिवैल्यूएशन से उसकी इकोनॉमी कम्पिटिटिव हो जाएगी, तो आर्थिक दरों में विकास होने की संभावना है। यदि ग्रीस वाकई में यूरोजोन छोड़ता है तो इसके कुछ परिणाम पोर्चुगल, इटली और स्पेन पर पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम जो पड़ेगा कि जो यूरोपियन प्रोजेक्ट है, जो एक सॉलिडारिटी, एक साझेदारी की जो आर्थिक समुदाय जो 1957 से चल रहा है, यूरोप की क्रेडिबिलिटी पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे, क्योंकि मर्कल ने कहा यदि यूरो फेल होता है तो यूरोप भी फेल होगा।
कई जानकार ग्रीस पर आए संकट का संबंध उसके भूगोल में भी देखते हैं। खूबसूरत द्वीपों, समुद्री किनारों और बेहतरीन आबो हवा का जो जादू सैलानियों को दुनिया भर से यहाँ छुट्टी मनाने के लिए खींच लाता है, उसने ग्रीस के लोगों में भी आराम पसंदगी बढ़ाई है।
जो बहुत फेवरेबल भूगोल था उसने एंशिएंट पीरियड में वहाँ के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी। उनके पास कोस्ट है, उनके पास क्लाइमेट है, उनके पास जमीन है, उनके पास फिनलैंड जैसी बर्फ की समस्या नहीं है, इंग्लैंड जैसी आइलैंड की समस्या नहीं है कि माल को लाना ले जाने में खर्च बढ़ता हो, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉस्पेरिटी वो आराम गर्दी के हिसाब में बैठ गए।
वजह चाहे इतिहास हो, भूगोल या फिर वर्तमान राजनीतिक स्थिति, ग्रीस का संकट ऐसी सच्चाई है जिसने यूरोप के साथ ही दुनिया को भी हतप्रभ किया है। यूरोप को इस संकट का कोई ऐसा हल ढूंढना होगा जिसमें यूरोजोन और ग्रीस दोनों की आबरू बनी रहे। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
चर्चा हो रही थी ग्रीस की, ले जाना था आपको विंबलडन, लेकिन अब समय समाप्त होने को है। घटनाचक्र में विस्तार से चर्चा करेंगे, चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों और अपने संविधान की उपेक्षा की है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकुओं ने मिस्र के सायनाय प्रायद्वीपों में सुरक्षा बलों पर लगातार हमले किए हैं। सेना के मुताबिक इसमें कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। हांगकांग में हजारों प्रदर्शनकारी चुनाव कराने और बीजिंग समर्थन प्राप्त चीफ एग्जीक्यूटिव सी वाई ल्योंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्सा का कहना है कि अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों में भाग लेकर वे राजनीति में फिर दाखिल हो रहे हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कैमरून उन 84 बच्चों को आज़ाद करने की प्रक्रिया में है जिन्हें 6 महीने पहले हिरासत में लिया गया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। 1.5 घंटे बाद घटनाचक्र कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की कुणाल शर्मा ने। रेहान फजल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।